موت اچھی تھی بھلا زندگی پا کے کیا کیا, موت اچھی تھی بھلا زندگی پا کے کیا کیا, آخ دنیا میں اگر پیار ہری سے نہ کیا, کام اور نام کی خاطر جو تو پچ پچ کے منہ, کام اور نام کی خاطر جو تو پچ پچ کے منہ, حیف پر ساتھ تیرا ایک نے آخر نہ دیا, حیف پر ساتھ تیرا ایک نے آخر نہ دیا, آخر دنیا میں اگر پیار پربھو سے نہ کیا, موت اچھی تھی بھلا زندگی پا کے کیا کیا. یوں تو سب کام کیے تو نے جہاں میں آ کر, یوں تو سب کام کیے تو نے جہاں میں آ کر, آیا تھا جس کے لیے کام وہ بالکل نہ کیا, آیا تھا جس کے لیے کام وہ بالکل نہ کیا, آخر دنیا میں اگر پیار پیا سے نہ کیا, موت اچھی تھی بھلا زندگی پا کے کیا کیا, آخر دنیا ایک دل تجھ پہ ہے اور لاکھ تمنا سے بھرا, ایک دل تجھ پہ ہے اور لاکھ تمنا سے بھرا, بندہ ہرس رہا جام صبوری نہ پیا, بندہ ہرس رہا جام صبوری نہ پیا, سودے دنیا کے کیے ذلتوں گھاٹے بھی سہے, سودے دنیا کے کیے ذلتوں گھاٹے بھی سہے, نفع جس میں چھپا ستگر سے سودا نہ کیا, بہر دنیا میں پڑے لاکھوں ہی گوتے کھائے, پھر بھی غافل نہ کیا تو نے کنارا نہ کیا, پھر بھی غافل نہ کیا تو نے کنارا نہ کیا, پشتے ناز ہے تو جس کا وفا اس میں نہیں, جس کو دل دینا تھا تو نے او ستونگل نہ دیا, جس کو دل دینا تھا تو نے او ستونگل نہ دیا, آخ اے دنیا میں اگر پیار پربھو سے نہ کیا موت اچھی تھی بھلا زندگی پا کے کیا کیا. ہری نے تھا جام دیا تجھ کو کہ سیتا تو سے حق نے تھا جام دیا تجھ کو کہ سیتا تو سے پھاڑ تو ڈالا مگر تونے یہ جام نہ سیا. پھاڑ تو ڈالا مگر تونے یہ جام نہ سیا. اے شہنشاہ جو رہا دنیا کے دھندوں میں پھنسا, نیم جان سمجھو اسے آدھا ہوا آدھا دیا. نیم جان سمجھو اسے آدھا ہوا آدھا دیا. آخر دنیا میں اگر پیار گرو سے نہ کیا موت اچھی تھی بھلا زندگی پا کے کیا کیا.
کل آپ کے سامنے منوش جیون کی بڑھائی, اس کی فضیلت مختلف مہاتماؤں کی بانیوں سے پیش کی گئی تھی. اس کو برہم پوری کر کے بیان کیا ہے برہم کے ساتھ ساتھ کرنے کی جگہ. بڑے بہادروں سے ملتی ہے منشی کی دیہی اور ہم بھاگشالی ہیں کہ ہم کو مل چکی. اس میں سب سے بڑا کام جو اور کسی یونین میں ہم نہیں کر سکتے, کیول منظور نہیں کر سکتے ہیں, وہ کیا ہے کہ آپ ہم اپنی آتما کو جو کبھی پربھو کی گود میں تھی جب سے بچھڑی اب تک واپس نہیں گئے, نہیں تو ہم کسی اور رول میں بیٹھے ہوتے. منظور میں ہی ہم اپنی آتما کو پھر سے اس کی گود میں پہنچا سکتے ہیں. سب مہاپرشوں نے یہی پیش کیا. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ پیش کیا گیا تھا کہ منوش جیون بھاگوں سے ملی ہے مگر چند روزہ. یہ بڑی گولڈن اپرچونیٹی ہے جو ہم کو ملی, سنہری وقت رات آیا ہے. دیکھنا یہ ہے پربھو پراپتی کے لیے ہم نے اپنی طرف سے یتن کیے, مختلف سماج میں داخل ہوئے اور ہر ایک سماج میں مہاپرش آئے ہیں. جس جس سماج میں ہو اس میں رہو. جن مہاپرشوں نے پربھو کو پایا ہے انہوں نے کیا بتلایا ہے کہ پربھو کہاں ہو. وہ فرماتے ہیں کہ جسم کی شوبھا ہم سے ہے جب تک ہم اس کے ساتھ ہیں, اور ہم بھی اس جسم کے ساتھ ہیں کسی اور طاقت کے آدھار پر جس کو پرماتما پریپورن یا گاڈ ان ایکشن یا نام کر کے بیان کیا. نانک نامے کے سب کچھ وسط ہے پورے بھارت کا ہے, اس کو پرماتما کہتے ہیں. اس کا انوبھو کرنا ہے آتما نے, مگر ہم سب کی آتما من کے ادھین ہے. من آگے انجوں کے ادھین ہے, انجوں کو بھوک کھینچ رہے. ہماری سوچ ان کے دوارا باہر دنیا میں پھیل رہی ہے. تو مہاتما کا انوبھو کیول آتما نے یا جس کو سوچ کہتے ہیں اسی نے کرنا ہے. کب؟ جب یہ باہر پھیلاؤ سے ہٹے इस हरिमंदिर जिस रूपी में दाखिल हो और इस महीने का घाट छोड़कर ऊपर चले। ए वडूचा होए को जिस ऊंचे को जाने से तो परमात्मा है कहाँ, वो हमारी आत्मा की आत्मा है। जब तक हम बाहर से हटते नहीं तब तक गो वो हम में है, हम उसको पा नहीं सकते। हम उसको कहाँ तलाश कर रहे हैं। माफ करना ग्रंथों पोथियों में परमात्मा का जो महापुरुषों ने अनुभव किया है उसका बड़ा कीमती ब्याज मांगू, जिसकी कीमत धीरे जहरा से भी ज्यादा कहा कीमती है। उनको पढ़ने से ये मालूम होता है कि परमात्मा हमारी आत्मा की आत्मा है। हम उसको क्यों नहीं पा सकते कि हमारी आत्मा मन के अधीन इंद्रियों के भोग रसों में लंपट हो रही है। जब तक इंद्र से हटे नहीं तब तक वो गति पा नहीं सकते। कई भाई धर्म स्थानों में उसको ढूंढते हैं, ग्रंथों पोथियों के पढ़ने से शौक बनेगा, ये पता लगेगा कि बात क्या है। मुझे याद रखो जिन्होंने अनुभव किया है उस प्रभु को देखा है, देखे का मत एक है। अपने महापुरुषों के कलामों को समझने के लिए भी हमें किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने देखा है या इस तरफ कदम उठाया। बुद्धि के लेवल पर अगर हम उसकी तफसीलें करेंगे तो नतीजा क्या है, एक भाई कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है। तो राइट इम्पोर्ट या सही मानों के समझने के लिए अगर हम किसी ऐसे पुरुष से सुनेंगे जिसने हकीकत को पाया है, उस परमात्मा का अनुभव कर रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे देख रहे हो, ऐसे पुरुषों की संगत में हम महापुरुषों के कलामों के सही मानों को समझ सकते हैं, जिससे शौक बनेगा, उसके पाने की तड़प बनेगी। बाकी कई भाई धर्म स्थानों में ढूंढते, धर्म स्थानों के लिए हमारी इज्जत है, वहां पर उस प्रभु के गुणावाद गाए जाते, मगर परमात्मा जिसके गुणावाद गाए जाते हैं वो जरे जरे में समा रहा है और नजदीक से नजदीक उसका कांटेक्ट आपके अंतर में है, तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। अब वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विधाव्यात चीज तो कहीं और हो, हम तलाश से कहीं और करें। कई भाई तीर्थ स्थानों में ढूंढे जाते हैं, अरे भाई तीर्थ स्थान कैसे बने, वहां पर कोई न कोई महापुरुष रहा, जो जहां रहा वो तीर्थ स्थान बन गया। एक महात्मा 10 जगह बैठा 10 तीर्थ बन गया। तो उन तीर्थों की फजीलत किस करके है कि वहां कोई न कोई अनुभवी पुरुष रहा जिसने प्रभु को पाया, जो जो भी उनसे मिले उन्होंने उसकी गति को पाया। जेरूशलम में क्राइस्ट हुए जीसस यीशु मसीह सारी दुनिया का तीर्थ, मक्का मदीने में हजरत मोहम्मद साहब हुए सारी मुसलमान दुनिया का तीर्थ, हिन्दुस्तान में जितने तीर्थ हैं, महात्मा बुद्ध ने जहाँ ज्ञान को पाया है वो सब बुद्ध दुनिया का तीर्थ है। गुरु नानक साहब ननकाना तलवंडी में पैदा हुए, उसका नाम ननकाना साहब पड़ गया। वली कंधारी से बातचीत हुई तो पंजाब साहब बन गया, कहीं रेठे के नीचे बैठे तो रेठा साहब बन गया। तो इसी तरह जितने और तीर्थ है वहां पर कोई न कोई ऋषि मुनि महात्मा रहा, इस खातर वो जगह लोगों की क्या करना चाहिए उसकी हज करने की जगह कहो यात्रा करने की फजीलत बने। मगर तीर्थों में जाने की हद क्या है, घर बार के झंझटों से आजाद होकर कुछ मुद्दत के लिए वहां जाए, वहां किसी न किसी अनुभवी पुरुषों के चरणों में बैठकर हकीकत को पाए, असली मतलब यह है। तो असल में वो है कहाँ, वो हमारी आत्मा की आत्मा है। तो चीज कहीं और हो, जब तक जो चीज जहां वहां ना ढूंढे तो वो कैसे मिले। تو ایک فقیر نے کہا یار در پہلو چڑا بے خبر, وہ پریتم جس کی تو تلاش کر رہا ہے وہ تیرے پہلو میں ہے اے بے خبر انسان. یار در تو مجھے دیدہ بدر, وہ پریتم تیرے انتر میں بیٹھا ہے اور تو در بدر بھٹک رہا. تو کبیر صاحب کہتے ہیں بھیجی کسی کو ساتھ لے لو جو اس راز سے واقف ہے, جس نے اس کو پایا ہے اگر اس کو ساتھ لے لو گے. بھیجی لیا ساتھ کر دینی بستو لکھائے, کوٹ یرم کا پنتھا پل میں پہنچے جا. اگر بھیجی کو ساتھ لے لو گے کروڑوں جنموں کا جو رستہ ہے تھوڑی دیر میں طے ہو جائے گا. وہ مہاپش کیا سمجھتا ہے کہ انسان کہ انتر ہماری سوچ انجوں دوارا باہر دنیا کا روپ بن رہی ہے, پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے اب تک باہری دیش کا رہتا ہے. نینو نیند پر رشبکا باہری سنسکار لے لے کر باہر سے جاگ ہو گیا, جاگ گیا انتر کے ہردے کے ریزروائر سے بھر گیا, مگر انتر سے انتر آپ میں اس پربھو کی طرف سے سو گیا. یا کانوں سے باہری باتیں سن سن کر باہر کے سنسکار بھر گئے, انتر جو اس پرماتما کی دھنی ہو رہی تھی اس کو نہ سن سکا. زبان باہر جیسے کوشوں کو لے کر نتیجہ کیا ہوا کہ باہر جیسے کوشوں میں پھنس کر اس مہارس کو پانے سے خالی رہ گئے. تو اس لیے وہاں پوچھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرش ہم ایک قسم کا جیون کیسے بتیت کر رہے ہیں جیسے سپرفیشل جیون کا ہو, باہری سنسکار لے لے کر سپرفیشل, اپنے آپ میں کبھی ٹیپ انسائڈ نہیں کیا کہ ہم کون ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں اگر اس گرہ میں کوئی جاگ اٹھ رہے, اگر اس آدمی میں جاگ اٹھے, ہم باہر سے تو جاگ کے انتر میں سو رہے ہیں, تو کیا کر سکتا ہے ثابت وقت کو اپنی رہے اپنی پونجی کو سنبھال سکتا ہے. نتیجہ کیا ہے کیونکہ ہم سو رہے ہیں, کبھی کام کے حملے ہو رہے ہیں, کبھی کروھ کے, کبھی لوبھ کے, کبھی موہ کے, کبھی ہنکار کے. جیسے ایک سویا ہوا آدمی مکان میں ہو, چور کوئی چیز رکھ جائے لے جائے اس کو کوئی پتہ نہیں, اسی طرح ہم ہری مندر میں سو رہے ہیں. ہمیں کبھی کام کا ویگ آتا ہے, کبھی کروھ کا, کبھی لوبھ کا, کبھی موہ کا, کبھی ہنکار کا, ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. پتہ اسی وقت لگتا ہے جب ہم لوٹے جاتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں اب ان سے کام چھڑائے, سب لوٹے جا رہے ہیں. نہ ماتا چھڑا سکتی ہے, نہ بھائی, نہ بندھو, نہ پتا, نہ کوئی, کیونکہ وہ آپ لوٹے جا رہے ہیں. جو آپ سو رہے ہیں سوئے ہوئے کو سویا ہوئے آپ کیسے جگا سکتے. تو ایسے پرش کی ضرورت ہے جو اس جسم روپی مکان میں ہری مندر میں جاگ اٹھا ہے. اگر وہ جاگ اٹھا ہے تب تو دوسروں کو بھی جگا سکتا, نہیں تو یہ کسی طرح سے بھی قابو نہیں آتے. اب جب تک یہ قابو میں نہ آئے ہم جاگ نہیں سکتے, جب تک جاگے نہیں کام بن نہیں سکتا. اب ان سے بچا کیسے جائے؟ عالم بھی اسی میں لٹے جا رہے ہیں, پاگل بھی, امیر بھی, غریب بھی, سب حاکم اور محکوم سب ایک ہی رسی میں بند رہے ہیں. تو اس لیے ایک مثال دیئے, کوٹھی ہو, بنگلو ہو, اس کے بعد پانچ کتے ہوں. اگر تم اس کوٹھی کے اندر جانا چاہتے ہو تو ان کتے آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے, خواہ ان کو روپیہ دو روٹی ڈالو تمہاری ٹانگوں سے پکڑیں گے اندر جانے نہیں دیں گے. تو ان سب کتوں کو قابو کرنے کا علاج کیا ہے؟ تم پکارو اس کوٹھی کے مالک کو, اگر آپ کی آواز اس کو پہنچ جائے وہ باہر آ کر تھوڑا پچکارا دے گا سب کو تیار جائے گا. تو اس انتر میں جاگنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کسی سادھو کا سنگ, جو جنہوں نے جس نے جو اس ہری مندر میں جاگ اٹھا ہے اور ان چیزوں پر قبضہ پایا, اس کی ایک توجہ سے, اس کی ہدایت سے, اس کی مدد سے وہ ہٹ سکتے ہیں, نہیں تو کوئی اپائے نہیں. اس لیے مہاپرشوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بھائی اگر زندگی کے راز کو آپ جاننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کسی ایسے پرش کی سنگت میں بیٹھو جس نے اس راز زندگی کو حل کیا. और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं महात्मा, उसको कहते हैं साधु, उसको कहते हैं संत। जो मानेंगे कि घाट से आधार होकर अपने आप को जिसने अनुभव किया है और प्रभु अनुभव को पा रहा है, ऐसी हस्ती की सोबत में हम भी पा सकते हैं। तो ऐसी हस्ती का नाम है साधु, ऐसी हस्ती का नाम है संत। तो किसी समाज में रहो, मैंने ये अर्ज किया था कि हर एक समाज में महापुरुष आए। रविदास जी चमार थे, लोगों ने कहा रविदास को, अरे भाई तुम चमार हो, प्रभु को कैसे पा सकते हो। तो बड़ा सख्त जवाब दिया, फरमाने लगे ओए बाप ने ना ही किसी को बावन को हरा जा, और किसी के बाप का खींचा हुआ है, जो भाव भक्ति करे वो देगा। नामदेव छिंदे थे, कबीर साहब जिलाए थे, अरे कहीं खत्री थे, कहीं ब्राह्मण थे, तुलसी साहब वाला। तो ये कहना किसी एक समाज का रिजर्व राइट है भाई ने, जिस समाज में उनके कलाम अब तक हमारे पास मौजूद है, अगर किसी ऐसे अनुभवी पुरुष से सुनेंगे जिसने हकीकत को पाया है, तो सब वही बात कहेंगे जो सब कह रहे, एक ही बात, क्योंकि देखे का मत एक है। तो इसके लिए किसी समाज में रहो, समाज में रहना एक बरकत है, जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, एक शर्त है, किसी समाज में रहो, किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो जो प्रभु का अनुभव कर रहा है, हम भी उसके अनुभव को पा सकते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब ने फरमाया कि वेदों शास्त्रों ग्रंथों पुरुषों के होते हुए भी हमें किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने उसको देखा। और वो कौन हो, हमारी तरह इंसानी शक्ल के जामे में हो, इंसान का उस्ताद इंसान। पहली पातशाही गुरु नानक साहब की वाणी है, फरमाते हैं वेद ग्रंथ गुरहट है, कई शास्त्र ग्रंथ पूछे, ये सब गुरु की दुकान है। जित लग भजन पार उतारा, जिसके साथ लग कर हम भजन संसार से पार जा सकते हैं। फिर आगे क्या फरमाते हैं, सतगुर बाज न बूझिए, जितने थरे न गुरा उतारा। जब तक कोई सतगुरु हस्ती न मिले, ये हकीकत खुलती नहीं। वो सतगुर किस फॉर्म में हो, कहते मनुष्य जीवन के जामे में हो, इंसान को समझाने वाला उस्ताद इंसान। तो ग्रंथों पुरुषों में क्या दिया है, जिन्होंने जो महापुरुषों ने देखा उसका बयान। सोन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेशे आके, संतों की शहादत को सुनो वो सच्ची है। वो कुछ बयान करते हैं जो उन्होंने देखा, तो देखे का मत एक। तो अब भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने देखा है, उसका नाम कुछ रख लो। तो मैं याद कर रहा था कि इसी समाज में रहो, समाज में रहकर एक बरकत है, और जब उसकी सोबत में बैठे हुए जिसने देखा है, उसने देखने के काबिल हमको कर देगा। संत संग अंतर प्रभ दीखा, संत की संगत में हम प्रभु के देखने वाले बन जाते हैं। पीछे आकर भाई पीछे बैठाओ, लोगों का ख्याल क्यों खराब करते हो। संत संग अंतर प्रवृत्ति था, संत की सोबत में हम प्रभु के देखने वाले बन जाते। सन नोज दी फादर एन अदर सुन दी सन रिवील्स, उसका बच्चा उसको देखता है। बच्चे कौन है, जितने अनुभवी पुरुष आए हैं आज सब उसके बच्चे हैं। जैसे चिल्ड्रन ऑफ लाइट जब आते हैं दुनिया को रोशनी दे जाते हैं, सारे जहान को एक जैसा उपदेश देते हैं। महापुरुषाक्षी बोल दे सारी सगल जहान, महापुरुष लोग शिक्षा देते हैं सबको एक जैसे। तो ऐसी की सोबत में हम भी देखने वाले बन जाते हैं। जिसने जिंदगी के राग को हल किया है, वही हमको जिंदगी के राग को हल करने में मददगार हो सकता है। और जिंदगी का राग क्या है, हम मानव जाति के हैं, ये मानव जाति का जो जिस्म हमें मिला है, ये चंद्रोदा है, इसमें हमने अपने आप को जानना था, प्रभु को पहचानना था। मगर हमारी आत्मा सबकी मन इंद्र के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठी है, इतना हम इसका रूप बन चुके हैं कि अपने आप को भूल चुके हैं, अपनी जीवन आधार को भूल चुके हैं। इसलिए हर जमाने में इस बात की ताकीद की गई कि जैसा काम सीखना हो उसके माहिर के पास बैठो। आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी के लिए किसी समाज में हो उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, बीएससी या एसएससी की डिग्री हो। जो भी बाल है वो मेडिकल कॉलेज में जा सकता, किन के साथ से पढ़ता है जो उसके मायर हैं, खै खान हो, सिंह हो, राम हो, दास हो, जोधो हो या स्मित हो, सारे कोर्स में पढ़ते हुए भी अपने ही समाज में वो रहता है। जब डॉक्टर फुल फ्लेज बनकर भी आ जाता है तो भी वो अपने समाज में रहता है। इसी तरह ये अध्यात्मक विद्या है, आत्म तत्व का बोध है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? नेक पाक सदाचारी जीवन जो कल पेश किया गया था। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सबसे प्यार, सबका भला सोचे, किसी से नफरत नहीं, किसी का हक न मारे, किसी का दिल न दुखाए, ख्याल की पवित्रता रखे और इंसान इंसान के काम आए। जिसकी ये क्वालिफिकेशन होगी वो जा सकता है अध्यात्मिक स्कूल में, वहां किससे पढ़ सकता है? जिसके मायर है, चाहे वो रविदास तिवारी क्यों न हो, कभी सब गुलाह क्यों न हो। हमारे घर फरमाया करते थे हमने अध्यात्मिक जो स्थान है क्या उसे कोई रिश्ता और नाता करना। हमने एक साइंस सीखनी है, जैसे डॉक्टर की साइंस सीखनी है, जो डॉक्टर हैं, जो इसके मायर हैं उसके पास जाओ। इसे जो अध्यात्मिक विद्या के मायर हैं, जो प्रभु के का अनुभव कर रहे हैं, हमें मदद करने में कुछ पूंजी दे सकते हैं, ऐसे किसी को तो खायब कोई भी हो। इसलिए गुरु नानक साहब से पूछा गया था हम कहाँ जाएं, कहते जहाँ मिले, जहाँ नाम मिले तो जाओ। ये चीज यहाँ से मिलती है, ले लो। आपने एक चीज लेनी है उस दुकान पर जाओ जहाँ वो बिकती। आलिम बनना है किसी आलिम के पास जाओ, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाओ, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ। अरे प्रभु को पाना है तो जिन्होंने पाया उसकी शोभा तो अख्तियार करो, उनका नाम पूछो। तो किसी समाज में रहो, समाजों में यही तालीम मौजूद है, जब से परंपरा चली आई है, जब तक ऐसा कुछ हमको मिले नहीं, हकीकत खुलती नहीं, और जब तक खुले नहीं हमने हमको अपने आप का आप तजुर्बा न हो, कभी कन्विक्शन होती नहीं। इसे महापुरुषों ने बड़ा आजाद दायरा दिया है, जब लगना देखूं अपनी नैनी तब लगना प्रतिजोगी की बहने, कि जब तक इंसान अपनी आंखों से आप उसका तजुर्बा न करे तब तक कहते गुरु के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं आते। कोई ऐसा पुरुष आपको क्या करेगा, तुमको मुस्लिम महात्माओं से उदाहरण देगा, फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, थ्योरी को समझाएगा, वो दूसरों के उदाहरण का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है वही कुछ जो उन महापुरुषों ने देखा। किस लिए पेश करते हैं उदाहरण? इसलिए कि हम जहाँ जहाँ जिस धन पुष्ट पर हमारा विश्वास है, ताकि हमें यकीन आ जाए कि वाकई कुछ है सही, फिर भी एक्सपेरिमेंटल मेजर के लिए उसको ले लो, जब तक तुम्हें अपना तजुर्बा न हो पूर्ण विश्वास नहीं। तो किसी समय अगर एक हिंदू भाई को उपनिषदों से या वेद भगवान से पेश कर दो तो ज्यादा दलील नहीं चाहिए, सिख भाई को अगर गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से पेश कर दो फिर ज्यादा दलील की जरूरत नहीं, मुसलमान भाई को मौलाना रूम या कुरान शरीफ से पेश कर दो तो फिर ज्यादा दलील की जरूरत नहीं। असल में बात वही है, तो ये इसलिए पेश की जाती है चीजें कि वाकई ये तालीम सबकी हमेशा से रही है। अब क्या तो इस वक्त ऐसे पुरुषों की संगत से क्या कुछ लाभ मिलता है, वो पुरुष क्या होते हैं क्या नहीं होते, कौन सी शक्ति ऐसे पुरुषों के अंतर काम करती है, वो आपके सामने रखी जाएगी। किसी महापुरुष की एक वाणी जरूर सामने ले ली जाएगी, मैं महापुरुषों से मिलेगा थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए, जैसे एक बोरी हो ना, कई बोरियों हो, दो दो धाने पेश कर दिए जाएंगे, भाई साहब यही कहते हैं सत्संग लाग रो होता है बिगड़ी को अभी बनाने।
बिगड़ी को बिगड़ी को अब भी बना ले, क्यों मूरख सुख में सोया, क्यों मूरख सुख में सोया।
हमने अपनी हालत को बिगाड़ रखा है। क्या हम आत्मा थे और हैं? मन इंद्रियों को और बुद्धि को सारी इंद्रियों को सत्या देने वाले थे। जब चाहे इसे काम लें, जब चाहे ना लें, मगर हमारा ही हालत क्या बनी, हमें इंद्रिय खेच रही उल्टे। जो हमारी ताबे होनी थी वो हमारी हाकम बनी बैठी। ये हालत हमने बिगाड़ रखी है। घोड़े ने टांगे को खेचना था, टांगा आगे और घोड़ा पीछे हो रहा। ये हालत जो हमने बिगाड़ी, हम थे चेतन स्वरूप आत्मा, मन के दीन्य के रूप और जिसम और जगत का रूप बन रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं, दुनिया उल्टी नजर आ रही था कुछ और। हम प्रेरित थे हर चीज के, मगर हम खिंचे जा रहे हैं। ये हालत जो हमने बिगाड़ी है। कहते भाई बिगड़ी को अब भी बना ले, ऐगा फल इंसान से क्यों भूल में सो रहा।
बिगड़ी को अब भी बना ले, क्यों मूरख सुख में सोया। अब तक सो सो उम्र गवाई, भांग के भाड़े पूंजी लुटाई। क्या ले वे तू अब अंगड़ाई, कुछ गुण प्रीतम के गाले, कुछ गुण प्रीतम के गाले। अब तक मुंह नहीं है धोया, जो मूरख सुख में सोया। बिगड़ी को अब भी बना ले, क्यों मूरख सुख में सोया। क्या फिरता तू इधर उधर है, क्या फिरता तू इधर उधर है। खोदी मूरख असली डगर है, क्या तू फिरता इधर उधर है। खोदी तूने असली डगर है, अब तक आया नहीं सबर है, अब तक आया नहीं सबर है। क्यों घर घर झाड़े जाले, पारतन मूरख क्यों खोया, पारतन मूरख क्यों खोया। बिगड़ी को अब भी बना ले, क्यों मूरख सुख में सोया। अब भी कुछ तू सोच समझ कर, बीती हुई पर एक नजर कर। मोती चुन ले छोड़ दे कंकड़, मोती चुन ले छोड़ दे कंकड़। क्या बिरथा देखे भाले, प्रीतम है तेज पे सोया, क्यों विषयन में तू सोया। मालिक तेरा है घट अंतर, चाहे तू फिर ले मंदिर। काशी मथुरा का बन कर बंदर, क्या इत उत देखे भाले। काटेगा वही जो बोया, जब तक घट में तू नहीं ध्यावे, तब तक वृथा ही टक्कर खावे। शहनशाह को कभी न पावे प्रीतम को तू कभी न पावे विषयन की नस को दबाले इसी ने है बेड़ा डुबोया क्यों विषयन में रोया बिगड़ी को अब भी बना ले क्यों मूर्ख सुख में रोया।
हमारे सामने जो आदर्श है वो प्रभु प्राप्त है। मैंने पहले याद किया था है चीज कहीं ढूंढ कहीं और कर रहे हैं। जब तक हम बाहर से हमारी सोच हटती नहीं अंतर्मुख होती नहीं इंद्रों के घाट से ऊपर आती नहीं वो प्रीतम हम बैठी हमारी इंतजार कर रहे हैं हम उसको देख नहीं। किसी समाज में रहो समाजों की गर्ज यही थी किस तरह से हम बाहर से हट सकते हैं किस राज्यों के घाट से ऊपर आ सकते हैं किस तरह हमारी अंतर आंख खुलती है उसको हम देखने वाले बन सकते हैं। तो आपका इसका इलाज कबीर साहब का एक शब्द आपके सामने रखा जाएगा गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। सत्संग लाभ
सत्संग लाग रो रे भाई सत्संग लाग रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई सत्संग लाग रहो रे भाई।
हमने ये जान लिया कि हमारी हालत बिगड़ी हुई कैसे बने अब इसका इलाज क्या है। कहते सत्संग के साथ लगे रहो। सत्संग किसको कहते हैं सत्संग कहते हैं सत का संग। सत कौन है परमात्मा उसका किसने संग करना है आत्मा ने। न इंद्रियों से जाना जाता है न मन से न बुद्धि से न प्राणों से। हमारी आत्मा इस वक्त इंद्र के घाट पर घिरी पड़ी है हम इसका रूप बन चुके हैं। जब तक इससे आजाद न हो मन इंद्र से ऊपर न आए उसके साथ लगे नहीं तो सत का संग नहीं। तो जिन्होंने सत के संग को पाया है उनकी सोच में हम भी इस सत के संग को प्राप्त कर सकते हैं। महापुरुषों ने तारीफ की है सत्संग की तो पहले दर्जे का सत्संग क्या है कि हमारी अपनी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर सत परमात्मा के साथ लगकर उस हकीकत को उस सुख को पाए। जब तक ये गति नसीब न हो तो जिन पुरुषों ने इस सत के संग को पाया है उसका नाम भी सत्संग। महापुरुषों ने कहा है गुरुवाणी में आता है जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई। जहाँ पर कोई सतगुर किसको कहते हैं सतगुर सत स्वरूप है। सतगुर वो हस्ती है जिसकी आत्मा सत के साथ लगकर सत का स्वरूप हो गए। सतगुर बाजो संगत ना हो जब तक ऐसी हस्ती की शोभ न मिले कोई संगत नहीं। जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई। जहाँ पर ऐसी हस्ती जिसने सत का स्वरूप बन चुकी है उसकी वहाँ पर सत्संगत का फल मिल सकता है। फिर यहाँ तक कहा है पूरे गुरते सत्संगत उपजे पूर्ण महात्मा से सत्संगत का फल मिल सकता है। उसका कारण कि वो खुद सत का आनंद ले रहा है जैसे वो ले रहा है दूसरों की सोच जो मनने के घाट पर दबी पड़ी उसको खींच कर उसका सत का संग का अनुभव करा सकता दिनों दिन उसको बढ़ा सकता। तो कहते हैं कि आ इंसान तू सत का संग सत्संग कर। कब काल कहते लगे रहो एक दिन काफी नहीं लगातार लगे रहो। इसमें क्या होगा जो तेरी बिगड़ी हालत है ये समझ जाएगी। सत्संग की किसको कहते हैं जो आपके सामने रखा और हम क्या समझते हैं किसी आलम ने आके लेक्चर दे दिया कथा ज्ञान सुना दी कोई तस्वीरें सुनाई कोई पुराने इतिहास सुनाए किसी महापुरुष की वाणी सुना गए अरे भाई ऐसों की सोबत का नाम सत्संग संतों की सलाह में नहीं, संतों की सलाह में सत्संग उसका नाम है जिसने प्रभु का अनुभव किया है, उसकी संगत का नाम सत्संग है, वो हमको भी अनुभव करा सकता है। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, ओ लोहा किंचन कराया कर ले आप समा। पारस और संत में बड़ा भारी फर्क है, पारस लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता, मगर संत तुमको संत बनाते। संत किसको कहते हैं? संत किसी देह का नाम नहीं, लाली नीले पीले सफेद कपड़े ये किसी एक खास पहरेवे ये दूसरे पहरेवे का नाम संत नहीं, संत हस्ती का नाम है। हमरो भटका बड़ो विवेकी आपे संत कहा, जिसके अंदर वो प्रभु प्रगट है, वो प्रभु को देख रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे देख रहे हो, उसकी सोबत में हम भी उसके देखने वाले बन सकते हैं। संत संग अंतर प्रभु दिखा, तो संत आपको संत बना देता है। बादशाह कभी अपने लड़के को वजीर नहीं बनाता, बादशाह ही बनाता। हर एक पिता ये चाहता है मेरा बच्चा मुझसे भी लायक हो जाए, तो इसलिए सब महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है। क्या करो, जान के मस्तक लिखो कर्मा सो पद पज परे गुरु की सर्वे, गुरबानी क्या जो बड़े ऊंचे भाग हो वो किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में जा बैठता, क्योंकि जिसने देखा उसी की सोबत में हम भी देख सकते हैं और सारे महापुरुष एक बयान करते हैं। सत्संगत में हर जीव बसा, संतन के उपकार, परमात्मा कहाँ बसता है, दवाइयां कहाँ मिलती हैं अस्पतालों में, मुकदमे कहाँ नजर आते हैं कचहरियों में, इल्म कहाँ मिलता है स्कूलों और कॉलेजों में, नमी कहाँ मिलती है सो घास फूस पर, और परमात्मा कहाँ बसता है साधु संग, जहाँ सत्संग हो, एक महात्मा भी हो, गिरजा गिर के हजार दो हजार दस हजार बैठे हो तो उसको सत्संग कहें, एक जागता पुरुष हो उसके गिर सैकड़ों आदि बैठे हो, हम कहेंगे जागते पुरुष की संगत है, सबको जगा सकता है। सारी दुनिया मोह माया सब जग सोया है, भ्रम कहो कि जाए कौन निकाल सकता है, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मैं मार्ग दे बताए, जो सहज अवस्था त्रिगुण अतीत अवस्था को पा चुका हो वो हमें इस रस्ते में डाल सकता, उसका नाम कुछ रखना। तो ये तकरीबन सब महापुरुषों ने इस बात की महिमा गाई है। यहाँ तक कहते हैं मौलाना रूम साहब ने कहा कि भाई तुम क्या करो, कहते हैं जरा नजदीक कसे बिनशी के ओ अर्ज दिल खबरदार, ऐ दिल तू किसी ऐसी की नजदीकी अख्तियार कर जो जिसको हमारी कैफियत का पता हो कि हम मन के हाथों कैसे बिक रहे हैं, इंद्रियों के घाट में कैसे बहे चले जाते हैं, जो इस झंझट से निकला है वही हमको निकाल सकता है, जो कभी इसमें आया ही नहीं वो हमें इससे कैसे निकाले। तो कहते हैं बने रहे यहाँ दरख्ते रहो बरो बुलाए सरदार, किसी ऐसे दरख्त के नीचे जाकर बैठो जिस पर फूल महक रहे, सायादार दरख्त हो फूल महक रहे। फिर क्या कहते हैं करना क्या चाहिए, दनी बाजार उतारा मरो हर सू चु बेकार, ये दुनिया के बाजार में तो बेकारों की तरह न, फिर बदुका ने कसे बिछी के दरो निविदा रख, ऐसे की पर बैठो जिसमें शायद हो शायद। फिर आपको पता है महापुरुष जब भी आते हैं असल होती है और नकल बहुत होती, तो क्या कहते हैं बाहर दे गए कि मैं जोशर मियावर काश काशा और मिनशी देख बड़े बड़े उबल रहे, बड़े प्रचार बड़े प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, जहाँ भी देख बड़ा उबलता देखो वहाँ प्यारा लेकर मत बैठो, वहाँ देखो असल में बात क्या है। कहते हो सकता है कि बाहर दे गए कि मैं जो शेर चीजें दिगरता, हो सकता है वहाँ दूध ही ना उबलता हो कि तेजाब की खुदगर्दी उबल रही, तो उसकी निशानी आखिर क्या हुई, उसकी निशानी यही है कि जो देखता है हमको कुछ पूंजी दे सकता, इसलिए जो हमारी आत्मा जो मन के घाट पर दबी पड़े तो खेच कर ऊपर ला सके, अंतर की आंख खोल सके, ये बाहरी एक निशानी है। जो पूंजी ना दे सके खाली कहे चलो भाई ये काम किए जाओ ये पाठ किए जाओ ठीक पहला कदम ठीक है, वो जाते हैं जो कि घास के ऊपर न आए, उसकी संतनों को पूंजीशों की वो मिले नहीं, हकीकत कैसे यकीन कैसे आता और आगे बंद कैसे तक। आग आग कहने से गर्मी नहीं आती, आतिश कहो फायर कहो ज्वाला कहो जिस चीज के नाम ये चारों चीजें हैं लक्ष्य, जब तक उसके साथ बैठना नहीं नसीब होगा गर्मी नहीं आएगी सर्दी दूर नहीं होगी। इच्छा बर्फ है उसको स्नो कहो आइस कहो यख कहो, लक्ष्य के उच्चारण करने से रुचि तो बनेगी मत ठंडक तब भी आएगी और गर्मी तब की तैयार चीज की तरफ जिसके पीने से प्यास बैठी। जब तक वो पानी न मिले पानी पानी कहकर है तो क्या प्यास बुझ जाए, कहाँ रुचि बनेगी शौक बनेगा उस तरफ जाने की रगबत होगी, ये बात तो ठीक। तो इसी तरह सत्संग में जब आप जाते हैं तो महापुरुष उसकी महिमा गाते हैं, उसका भाई ये पुण्य है, उसका उसको राम भी कहते हैं, उसको अल्लाह भी कहते हैं, कोई गुसाई कहता है, कोई कुछ कहता है, मत जिसके लिए नाम है उसके साथ लगे तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। तो सत्संग देखिये बड़ी महमा की जाई गई है, गंगा जहां से निकलती है बड़ा सदमुख बड़ा थोड़ा जगह जल निकलता है, रस्त में कई नदी नाले उससे मिलकर सब गंगा जल हो जाते हैं, कई गंदगी उसमें डाल दी जाती है फिर भी वो गंगा जल, शराब की 20-50 बोरी डाल दो फिर भी वो गंगा जल। मतलब क्या समझाने के लिए कि सत के साथ रखकर कितना पापी से पापी क्यों न हो वो पाप भी धो जाते हैं शांत भूल जाते। ये पाप कहाँ से आते हैं, इनमें से घात के भोगों से मल्लम तत्व में जब उस रस को पा लिया सत्य अंतर में सत्संग में अंदर ही कुछ तुमको परिपूर्ण परमात्मा ज्योति सूर से जोड़ता, जब उसके साथ ज्योतियों हो कुदरती उसके साथ लगकर कितना भी पापी क्यों न हो तो कार्यवाहार हो जाता है। तो इसलिए महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि सत्संग में लगे रहो, सत्संग बड़ी भारी नम है, पानी के साथ अगर पत्थर भी पड़ा रहे ना तो वो भी ठंडा हो जाता है। इसी तरह अगर नए पुरुषों की सोबत रहे तो उसमें कुदरत की बात है टिकाव मिलेगा। किसी सत्संग की निशानी क्या है, जिस जिथिया मन रहती है सतगुरु किसका नाम हो, जिस जिथिया मन हो नंदा से सतगुरु कही रेडिएशन होती है, रेडिएशन से टिकाव मिलता है, जहां टिकाव मिलता है समझो कुछ है। ऐसे पुरुषों की संगत के लिए ये ताकीद के लिए कि जब तक ये मिले काम नहीं बन सकता, तो रूहानी पुरुषों के प्रभाव से जो और ख्याल होते हैं वो हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अटल से ठंड को शांति मिलती है। तो ये आखिर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता, जैसी सोबत वैसा रंग। गुरु नानक साहब थे एक मिथिलासी उनसे मिला, उनको कहा भाई तू सत्संग किया कर, सत्संग करे कुछ मिनट के बाद पूछा अरे भाई सत्संग कैसे होती है, सत्संग डंगर मुंह खोल कर बैठे होते हैं और क्या होगा। तो क्योंकि और सुंदर क्या तुम और की कुछ देर के बाद मिले पूछे भाई सत्संग कैसा होता है, क्या ये आदमी बैठे होते आदत बदली है संगे से, फिर और मदद के बाद पूछे क्यों भाई सत्संग कैसे होते बड़े श्री सिंह बैठे थे, फिर और उसके बाद पूछा भाई संगत कैसी होते कुछ मदद हुआ क्योंकि रंग रूप बैठे होते। तो संगत करने से वैसी सोगत वैसा रंग मदद की बात है हर इंसान की बदल जाती है, तो जैसी सोगत वैसा रंग। इसलिए महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे पुरुषों की संगत करो जिसके प्रति पर्वत है। उनमें क्या है एक निशानी, वो प्रेम का स्वरूप होते सुमर भरे प्रेम रसन रूप के क्या साथ के थे, वो प्रेम के अगर प्रेम प्याले होते उनकी सोबत में बैठकर रेडिएशन आपको प्रेम की थोड़ी पूरी मिल जाती है। रविदास के सामने सुनवाए खेल गया जीविया जिस हर प्रीतन का हमारे जीवन पर हजार बार लानत है अगर मनुष्य पाकर हमारे सत्संगों का प्यार नहीं बना। फिर कहते उन कामों का भी लानत है जिनके करने से वो प्रभु भूल जाए हम ज्ञात में फंसे। अब सवाल ऐसा ये प्रेम कहाँ से मिले, खेतियों में उगता नहीं दुकानों पर बिकता नहीं। तो कहते उसका एक इलाज ऐसे सदगुरु को पीट कर जित गोविंद छोपी को जो सचगुरु धरती है उससे प्यार करो, एज यू थिंक सो यू बिकम, जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बन जाओ। मेरा ऐसा सदगुरु बिन भागा, ऐसा सदगुरु नाम तो हमेशा सारे महात्माओं ने इसकी बड़ी मैं मंगाई है। तो इसलिए गुरबानी में आप देखते हो फरमाया है कि महापित साधन जिस पेटत लागा हरि है, साधु की संगत महापितता के देने वाली है, जिसके साथ भेंट करने से हरि का रंग और नच आ जाता। साधु किसको कहा है, एक पूरी स्पदी इसकी मैं मंगाई है, साध प्रभु बिन भेद न भाई, साध रूप अपना तन लहरा। तो ऐसे साधु जिसके अंतर प्रभु प्रगट है उसकी महिमा बयान नहीं आ सकती। नानक परम परिजन परम से परे है, तो संगत को पाकर तो हम क्या कहते, भेटने से हमें नशा आ जाता। याद रखो स्पिरिचुअलिटी कैनॉट बी टॉट बट कॉट। स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्मक नशा जो है वो पढ़ाया सिखाया नहीं जा सकता, शो की तरह जीवन से आता है, लाइफ से लाइफ आती है। तो जैसी सोबत वैसा रंग, तो उनके पास बैठने से क्या होगा, थोड़ी देर के लिए मन को टिकाव दूंगा। जिस दिखिया मन रहती है क्यों कर पाई तुम संग लियो, संत सजन मन मित्र से लाइन हर्षियों रंग लियो। ऐसे पुरुष मिल जाए उनकी सोबत लगातार करने से हमारे अंतर नशा आने लगता। जिस नशे को वो नाम के समार में है ना, तो वो समार उनसे समार से समार बढ़ता। गुरु नानक साहब जब बाबर से मिले हैं तो बाबर ने भांग का प्याला पेश किया है, कहने लगे अरे बाबर ये नशा तू सुबह पीता है शाम को उतर जाता है, शाम को पीता है सुबह उतर जाता है, मेरे पास वो नशा है जो कभी उतरता नहीं, नाम हमारी नाम का चली रहे जिंदा, समार से समार लाइफ से लाइफ आती है। ये चीजें ग्रंथों पोस्टे सारी दुनिया की लाइब्रेरी पढ़ने से नहीं आएंगी, जिंदगी से जिंदगी मिलती है, लाइफ से लाइफ आती है। इसी लिए कहा है महापुत्र सात का संजिश से लागर, ये मुसलमान फकीरों ने कहा जो चाहता है प्रभु के पास बैठना, जो उसके पास बैठने उनकी शोभा तक आ जाता। तो इसलिए सारे महापुरुष मौलाना रूम साहब ने कहा यत जमाने हम लिखेंगे यत जमाने बावरिया बेहतर अक्सर साल अकाश दे दिया। अगर तू एक घड़ी घड़ी 20 मिनट की होती, अगर तू किसी वली अल्लाह के पास तुझे बैठने नसीब हो जाए तो उसका फल 100 साल देर या भक्ति से जाए। एक आग को रगड़ रगड़ कर जलाना है, एक जलती आग के पास बैठ के किनारी ले जाना, बड़ा भाई फर्क है। बल्कि श्रीमद भागवत में साफ कहा है न योग न ज्ञान न धर्म पुस्तकों के पढ़ना न तीर्थ न तप न त्याग न दूसरों की सेवा न दान न पुण्य, सब गिनते चले जाते हैं, और न पाठ न वेदों का पाठ ग्रंथों कोशों का पाठ न मन इंद्रियों के दमन करने से इतना जल्दी जीव मुझे पा सकता है जितना जल्दी के साधु संग। साधु की महिमा बड़ी भारी गाई है। तुलसी साहब ने कहा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ है, संतों का समागम मिलना और हरि की कथा जो गाई जाएगी उसका अनुभव करना, ये दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। किनको मिलती है, जिन पर कृपा राम की तुझे प्राप्त हो, जिसको परमात्मा आप दया करें, तो प्रभु जिसको मिलाना चाहता है अपने साथ किसी मिले हो को मिला दे। समझे, यही गुरबानी में आता सुनाते हैं क्या के हरि कथा जो है प्रभु की संगत, हर कीर्तन साध संगत अक्षर कर्म की कर्म, बात वही कह रहे हैं। हरि का कीर्तन जो रहा है दुर्लभ, और साधु की संगत हर कीरत साथ संगत है सिर कर्म, सब कर्मों का सिर कर्म है। किसको मिलता है, जिन पूर्व जन्म का लेना। तो ऐसी संगत जब तक न मिले काम नहीं बनता। नेकों की शोभत हमें नेक कर देती है, बदों की शोभत हमें बंद कर देती है। तो इसलिए बार बार सत्संग की महिमा गुरु से भी ज्यादा ध्यान दीजिए। गुरु 20 विषय, संगत 21 विषय। जहां तक तो मतलब क्या है, जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उनकी शोभत हो जाएगी, जल्दी चीज मिल जाएगी। तो उनकी उन्होंने अपनी बिगड़ी हालत को संवार रखा है। क्या संवारा है? मन इंद्रियों को दमन किया है, आत्मा को मन से एनालाइज करके अपने आप को जानना, प्रभु अनुभव को पा रहे हैं। वो नशे को पा रहे हैं, जोर से मिलता वो भी नीचे से उठा ले जाते। महाचेतन प्रभु बंगाल में एक महात्मा हुए, उनका हर एक महापुरुष का अपना अपना बोला होता है। गुरु नानक साहब को बोला था सत्कता, समाधि में चले जाते थे तो उनका बोला था हरिबोल। वह धोबी घाट पर चले गए, वहां पर धोबी के किनारे खड़े होकर कहने लगे हरिबोल हरिबोल। उसने समझे कैसे पैसा मांगने वाला आ गया, चुप रहा। जब दो तीन बार कहा, कहता मैं नहीं बोलता भाई। उन्होंने कहा तुमको बोलना पड़ेगा, कहो हरिबोल। वो कहते पीछा छोड़ता नहीं, चलो हरिबोल क्या ही जाओ। जब हरिबोल कहा उसमें तवज्जो थी ना, जब हरिबोल कहा वो भी हरिबोल करने लगा। मैं क्या आ गया, काम छोड़ दिया, हरिबोल 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 करने लगे। साथ के दोगे भाइयों ने देखा, भाई इनको क्या हो गया, क्यों भाई क्या बात है, कहते हरिबोल। जो हरिबोल वो देखे नाचने लग गया, हरिबोल न करेगा। हटा के सारा धोबी घाट ही नाच था। तो ये चीज है जो हम संतों या अनुभवी पुरुषों के चरणों में लेने जाते हैं। पढ़ना लिखना विचारना तो कोई सिखला तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जिंदगी जिंदगी से आती है। जिन्होंने इसको पाया नहीं उन्होंने उस हालत को अनुभव नहीं कर सकते। बोले शाह ने बड़े साफ लोगों ने कहा, कहते हैं ना खुदा खुदा भी लगदा और ना खुदा नमाजी, ना खुदा मैं पीठ ही जिठा कहने पहने छा गया। क्या देखा कैसे पाया, कहते बुलिया सब मुर्शिद मिल गया, सुखते सब तका। हकीकत सामने झलकने लगी, जिसका जिक्र ग्रंथों पोथियों में पड़ा करते वो अनुभव करने में आया। ये है महापुरुषों की शोभ का संस्कृत। ऐसे पुरुष सही आता है, ऐसे पुरुषों की जरूरत हमेशा से रही। ऐसे पुरुषों को गुरु कहा जाता है, ऐसे पुरुषों को सत्संग कहा जाता है और हमेशा हर एक को इसकी जरूरत रही। कबीर साहब ने कहा कि जब तक कोई अनुभवी पुरुष न मिले तब तक काम नहीं बनता। ये गुरु नानक साहब ने कहा, दिन गुरु मिले कोई न पावे लग तो चीजें करूं कहीं। संतों की संगत में ही हमें सीधा रास्ता मिलता है। हमारी ऐसे पुरुषों से मिलने से हमारी दुर्मति का नाश होता है। राइट अंडरस्टैंडिंग को पाते हैं तो राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पाते बल्कि उसका कांटे को पूंजी मिल जाती। तो कभी साहब कह रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। तो बिगड़ी बात के बदलाने के लिए हमें ये जरूरत है। है गुरु बिन पाओ बिन करे न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। शंकर सबसे बुद्धिमान माने गए हैं। यदि शंकर कैसे भी बुद्धिमान हो फिर भी किसी अनुभवी पुरुष की जरूरत है, क्योंकि एक नक्शा लाइफ से लाइफ आती है। बल्कि यहाँ तक कह दिया राम कृष्ण के को बड़ो चिंदी चौधरी की तीन लोग के नायका बुला गया भी। भगवान राम के गुरु थे ऋषि जी महाराज, भगवान कृष्ण जी के गुरु थे इंद्रश ऋषि। लोगों को दृष्टि पड़ी है उसमें दिख रहा था केंद्र में सूर्यवत तेज है, उसमें से नाद हो रहा है। इसकी तालीम इंग्लिश ऋषि ने देवकी के लड़के कृष्ण को दी। जब ऐसे ऐसे हस्तियों के लिए गुरु की जरूरत है, अनुभवी पुरुष। अगर पढ़ना लिखना विचारने का काम होता तो किसी से आप कर लेते। एक सेल्फ एनालिसिस जड़ चेतन का अलहदा करना, बाहर से हटकर इन्हों को छोड़कर इंटू दी बियॉन्ड राइज अबव करना, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। अगर कोई भाई अपने आप कर सकता है तो मुबारक है, अन्य को दो आंखें चाहिए। अगर ना कर सके तो दुनिया के कामों में हम किसी न किसी की मदद ले लेते हैं। इसका हम किसी की मदद ले ले, अगर कुछ पूंजी मिल जाए, जिनों दिन कमाई करे, काम बन जाए। और सवाल ये आ जाता है कि भाई गुरु या साधु होता कौन है, उसमें कौन सी ताकत है जो उस बात पे हमारी मददगार हो सकती है। देखिए परमात्मा का कोई स्वामी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंदी नहीं, कोई माता नहीं, पिता नहीं, उसके साथ कौन जोड़ सकता। ये कहना पड़ेगा कि वो परमात्मा जो घट घट में सबके है, सबो घट मेरे साइया, सुनी सही न कहो बलिहारी किस घट के जानकर प्रगट हो। जिस घट में वो प्रगट है वो बलिहार जाने के काबिल है। वो मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन, वो ही दूसरे की आत्मा जो नीले के घाट पर दबी पड़ी है उसको खैर कर प्रभु के साथ जोड़ सकते। नो सन ऑफ मैन कैन डू इट। तो गुरु असल में कौन? आदम से के अवतारा सोई गुरु समझे हमारा। आदम से जो प्रभु है परमात्मा वही सत्य मानो में गुरु है। वो जिस घट में प्रगट है उसकी हमने इज्जत करते तो साधु संतर महात्मा कहते हैं। कोई नई बात नहीं, प्राचीन से प्राचीन हमेशा सवाल चला आया है। गुरु नानुसार से पूछा गया गुरु तुम्हारा कौन है, तेरा गुरु कौन है भाई, केला कहाँ रहा है, क्यों कर मिलना बिहार, क्यों आना जाना रहा है, कि तेरा गुरु कौन है, वो कहाँ रहता है। कहते हैं गुरु हमारा गगन में केला है, गटमा है, शुद्ध शुद्ध मेला बिहार विस्तृत से गुना। बात समझे, ये सारे महापुरुषों ने बयान किया है। चलो गुरु 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 जानिए, गुरु मुख्य स्वरूप उनके लगे था गुरुदास। अब आप समझे गुरु कौन, गुरु वही एक जिस खत में वो प्रगट है उसके हम तारीफ करते हैं, उसके साथ दूसरे महात्मा का। चाहे तो कि सब इसमें समर्थ है क्या, वो मौत भी सौगात है, सब प्राइस कहते हैं मौत भी सौगात। जैसे गुरु नानक साहब ने सुनाया, जैसे मैं आया फसल की बानी कैसे करेंगे आदमी लाल, दास बुलाया बोले। वो आप मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलते, बल्कि जो मालिक अंतर से उन्हें चलाता है वही कहते हैं। जाहिरी शक्ल इंसानी रखता हुआ भी वो दुनिया में काम करता नजर भी आता है, वही दो आंखें दो आप पांव हैं, मगर जब जाता है तीन को छोड़कर आसमानों की सफर करता है। दूसरों को भी ले जाने में समर्थ, थैंक यू शो पूर्व बलवान, देश की समर्था का जिक्र सब महापुरुषों ने बयान किया। फरमाते हैं क्या एक जगंडा अंध कुमारा है, दिन गुरमग न पाए, सारा जहान गंदा है अंधकार के कर्म करता। सतगुर मिले पाए अच्छी है, अपनी अच्छे से आप देखे किसी की जाय की जीती है, तो सतगुर मिले अंधेरा जाए जहां देखा तारे असमार। तो ये रस में क्यों पेश कर रहा हूं, इसलिए कि आम फैन आजकल गुरु के नाम से लोग मुतनफर हैं। वो समझते नहीं कि असल गुरु किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं। गुरु वो परमात्मा है जिस घट में वो प्रगट है। गुरु वह आप सुमोए शब्द वर्ता है, गुरु के अंतर वो परमात्मा आप सुमाता है लोगों को प्रभु के साथ। वर्ल्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट, वो शब्द मुजस्म हो गया हमारे दरमियान रहा। तो उसमें जोड़ने वाला कौन है, वो परमात्मा मैनिफेस्ट। तो ऐसे की सब थी यहाँ पर फंक्शन अंतर पर बीठा, इसलिए कहा भाई कबीर साहब ने चैलेंज किया, भाई रे कोई सतगुर संत कहा है, नैनो अलग होता है, कोई आपको संत और सतगुर बताता है वो आंखों से हमें, वो आंखों में जिससे वो नजर आता, थोड़ा या बहुत कुछ पूंजी मिल जाए फिर तो यकीन के काबिल है ना, मरकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या अखबार है भाई, संतों ने तो जीवन मुक्त माना। तो कहते ऐसे पुरुषों की संगत में ही असली गति इंसान की हो सकती है, प्रभु को पा सकता है, हमारी बिगड़ी हालत संभल सकती है।
सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, सत्संग लाग रहो रे भाई, दौलत दुनिया माल खजाने बगिया बैल चराई।
कहते हमारी हालत क्या बिगड़ी, कहते बैल दुनिया की चीजों में हमारी छोट लंपट हो गई। छोट सबको सत्या देने वाली थी, बैल शेर ने बैल को खाना था, यानी छोट ने मन को काबू में करना, उसी को सत्या दे रही थी, उल्टा बैल शेर को खा रहा है। मन छोट ही से सत्या लेता है और छोट ही पर सवार, ये हालत हमारी बिगड़ गई। जैसे होता है नागबैल जो दस रूपयों की जड़ होती नहीं, जितने हिस्से पर वो समा जाती है ना बैल, वो खुश हो जाती है। इसी तरह ये मन सत्या लेता है आत्मा से, शुद्ध से, और उसी पर सवार होकर उसको उल्टा चला रहा। कहते ये हाल तुम्हारी बिगड़ी है। तो महापुरुष क्या करते हैं, इस मन शुद्ध साधु संग ठहराई तो मन शुद्ध और शुद्ध पाए। शुद्ध साधु की अंतर ठहरती है, शुद्ध साधु संग ठहराई तो मन फिरता शुद्ध, तब मन खड़ा होता। शुद्ध अगर कंट्रोल में आ जाए तो मन ताकत कहां से लेगा। अगर किसी फर्म समझो, कुछ फैक्ट्री समझो, जिसका पावर हाउस है, अगर पावर हाउस से पट्टा उठा दिया जाए तो मशीनरी खड़ी हो जाएगी कि नहीं। अगर शुद्ध किसी और चीज में मैम हो जाए तो मन में क्या करेगा। आपका तजुर्बा होगा कि जब आप किसी ख्याल में मैं बैठे हो, कान खुले हैं, कोई आवाज देता है सुनते नहीं हो, क्यों भाई? क्योंकि हमारी शुद्ध उसके इंद्री के साथ नहीं। न्यूटन थे, एक दरिया के किनारे, सड़क के किनारे बैठे थे, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, पास से बैंड बजता हुआ निकला, गुजरा, पीछे आके किसी ने पूछा क्यों न्यूटन यहाँ से कोई बैंड गुजरा, कैसे मुझे पता नहीं। तो शुद्ध सत्या देखिए ना, न्यूज हमारी दूर क्या बनगी, हमारी सत्य सची सची एक ही इंद्री का गुलाम, या तो मौत के घाट हो सकता है या सारी उम्र की गुलामी चल रही है। देखिए करवाना तो आंख इंद्री प्रबल है, जल माता मछली को चखने की इंद्री बड़ी प्रबल है, दया में आजाद करने वाली मछली कैसे पकड़ी जाती है, जाल में कुनिये लगाती है, कुनिये में आटा कुछ लगाकर दरिया में आवाज भरने वाली मछली चखने की हवस में हड़प करती है, गले में फंस जाती है, तर तर से मर जाती है। भावड़े को सूंघने की इंद्री बड़ी प्रबल है, वो फूल में घुस कर मर जाता है। तो तीन इंद्रियों का गुलाम भी मौत के घाट उतरता, बाकी रह गए दो, एक कान की इंद्री, हिरण को बड़ी प्रबल है। जंगलों में जाओ, वहां हिरण बड़े तेज की तेज रफ्तार जानवर, घोड़ा उसको नहीं पकड़ सकता, एक ही छलांग उल्टी मारकर 20 मीटर की मार जाता। कैसे पकड़ा जाता है, जो शिकारी लोग होते हैं ढोल बजाते हैं, ढोल की आवाज पर मस्त होकर आकर से रख देता है, सारी उम्र की गुलाबी चले हाथी किन्ना छाग और जानवर से, जिसको जंगल में आप देखो दस्तों के दस्तों से फेंक देता हूँ। उसको कैसे पकड़ते हैं, बड़े गहरे खोद कर गड़े ऊपर घास फूस टहनी लगाकर, ताकि मालूम हो कि यहाँ कोई गड़ा नहीं, समझे, लड़ा नहीं। ऊपर अखरी की शक्ल बना देते हैं, स्पर्श के वेग में आया हुआ इंसान छलांग मारता है, सब कई दिन भूखा रखकर सारी उम्र अंकुश के नीचे रहता। अरे एक ही जिंदगी का गुलाम जी, या तो मौत के घाट उतरता है या सारी उम्र की गुलामी सिर लेता है। अरे वे जिसके पांचों इंद्रिय पसंद है उसका क्या असर होगा, ऐसे रस शरीर के क्या घटना हुआ। हलवा खाने के लिए तो मुंह चाहिए, हलवा खुद न रुए बात। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बिगड़ी हालत को संवारने का इलाज उनकी सोबत है जिन्होंने संवार रखा। हम सब इन्हीं के घाट पर खींचे फिरते हैं, खाए अमीर हैं, गरीब हैं, आलम हैं, लेक्चरार हैं, कथाई हैं, ग्रंथाकार, जिसने अपनी सोच को कल स्वच्छवंत बना, जब चाहे आंख देखते हुए न देखे, सुनते हुए न सुने, समझे, ऐसा कंट्रोल खुद मन के राज जो इंसान है उसकी सोच में उसकी रेडिएशन से भी हमें टिकाव मिलता। इसलिए कहा जिस मन जिस दिशा मन रहती है सब ये पिछड़ना। तो बड़े प्यार से समझ कि हमारी ये बिगड़ी हालत ऐसी बन गई, इसको संवारने का इलाज सत्संग। आगे
मानत दुनिया मालक जाने बगिया बैल चराई, जब ही काल का डल्ला बाजे, जब ही काल का डल्ला बाजे, खोज खबर नहीं पाई, सत्संग लाग रहोले भाई।
इसी भूल में बैठा हुआ इंसान, भूला हुआ इंसान कब हो बाहर से जागता है तो फिर सोया रहता है। कब जागता है? जब यक जग कह कभी तही न जागे, जब जम कर दंड मून में लगा, उस वक्त होश आई तो क्या है? अब पछताए क्या होती चिड़िया चुकी थे। अगर किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर सोचवंत बन जाए, सोच में बड़ी भारी ताकत है। परमात्मा महान सोचते हैं। एक बार उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक कवाओ दृष्टि हो लख दरियाओ, कुन फी कुन हो बस हो गया। अरे उसी महान सुख की हमारी आत्मा अंश है, इसमें भी बड़ी भारी ताकत है। ग्रेट इज मैन, मगर मन इन के घाट पर सुख फैल रही है, हम निर्बल और कमजोर कर रहे हैं। तो महापुरुष उनकी सुख सुख मंत्र है, कंट्रोल है, और प्रभु से मिलकर उसका माउथ पीस बन रही है। ये फर्क है, वो हमें भी सुख मंत्र बनाते हैं। कैसे थाली सुख मंत्र में लाना है और कैसे इन के घाट से आकर परिपूर्ण परमात्मा का माउथ पीस बनना है, ये है महात्मा का काम। जाओ ढूंढो। तो ऐसे पुरुषों की संगत का नाम सत्संग।
ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई।
अब सवाल आता है कि सचमुच ये तारीफ है साधु संतों की, महात्माओं की, फिर ऐसा साधु मिले कैसे? आज पैदा हुई नहीं, किसी तरह मिल जाए। गुरु अमरदास के साथ 70-72 साल तक इसी तलाश में रहे। आप फरमाते हैं बहुत था का कर्म कुमार, कि मैं थक गया था कर्म करके। अरे भाई 2-4 साल 70 साल कई साधन किए, मगर कहते हैं सतगुरु मिलिया सहज स्वभाव, आकर सतगुरु मिले मगर दिल भागा ऐसा सतगुरु नाम। तलाश कहते अब ऐसी हस्ती की तलाश कहां की जाए? अंधा आंख वाले को नहीं पकड़ सकता, आंख वाला दया करके हाथ पकड़ ले तो पकड़ ले। गुरुवर्ती साहब ने फरमाया है हम मंडले अंध दिखे बिखराते क्यों चाले गुरु चाले। हम अंधे हैं, अंधों के भी अंधे हैं, क्योंकि माया की जहर तेरी पड़ी। जो जहर को खा ले उसे ना दिल ठिकाने ना होश ठिकाने, वो सोच ही नहीं सकते। कहते फिर ऐसा कुछ क्यों चाल है गुरु चाले? गुरु तो चल कैसे सकता है? वो तो कहे ये कुराइया कहते हैं तो नहीं बात में कहते वो आप दया करके आप आकर अपने पाल में रख ले तो रख ले, पर ये किसके अंतर आती है? जिस अंतर प्रभु के पाने की तक किसी सबब से हो, पिछले संस्कारों के सबब से हो, रिएक्शन का विकास यहाँ दुनिया के नीचे वो अपराध में गुजरते हुए जल हत्या में कोई परमानेंट सुख चाहिए, इनमें सुख नहीं है। जिसमें ये तड़प बनती है कुदरत की बात है, वो परमात्मा घट में दोस्त है। ये बच्चा मुझे पानी को तरस रहा है, कोई सामान करता है किसी पोल पर जहाँ वो प्रगट है तो उसको मिला देता है, तो उसमें प्रगट हुए हुआ परमात्मा दूसरे को परमात्मा के साथ जोड़। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या कहते हैं फिर?
ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई।
कहते हैं अगर तुम ऐसे पुरुष की तलाश में हो तो क्या करना चाहिए? ऐसी भक्ति करो जिसमें कपट ना हो। कपट किसको कहते हैं? दिल में और जबान पर हो। अरे भाई आपका दिल मांगता है, मिली है चीज तो कह हाँ ठीक, नहीं मिली तो कह नहीं मिली। फिर चतुराई करके उसको छुपाना, क्यों महाराज आपको मिला? हाँ हाँ बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। अच्छा हमको दो, अभी तो 100 साल में हमने शायद आपको 500 रुपये दे दें। अरे किसी महापुरुष की बढ़ाई किस बात में है? इसी बात में है कि वो कुछ पूंजी देने के काबिल है। संत संगंत संतों को पूंजी सौंपे, ये बढ़ाई है किसी महात्मा की। लाई करते भाई लेक्चर कथा ज्ञान बाई तीन चक्रों का बनाना, पूजा कैसे करनी चाहिए, पाठ कैसे करना चाहिए, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, रस्म रवाज कितना अदा करनी, ये तो कोई भाई छोड़ी छोड़ी से बतला सकता। किसी महापुरुष की बधाई आपने समझी, इस बात में है कि हमारी आत्मा जो मन इंद्र के घाट पर दबी पड़ी है उसको लाकर थोड़ा अनुभव दे। किसी को ज्यादा या कम अपनी अपनी बैकग्राउंड रहे, मगर हर एक को कुछ न कुछ पूंजी मिलती। एक इंसान आए लक्ष्य दे, बड़ी आला तकरीर करे बिजनेस के असूलों पर, ये असूल है अगर तुम इस पर चलोगे बिजनेस पास पर करेगी, मगर जिनको वो लक्ष्य देता है उन बिठाने के पास पैसे को आपका लक्ष्य क्या करेगा। अगर थोड़ा थोड़ा चाची को भी दे दो ना सर, 200-400 रुपया फिर तो ठीक है तुम्हारा लक्ष्य। हम लक्ष्य तो देखते हैं पूंजी नहीं दे सकते, आगे बेचारे क्या करें। जो आज उनके तो घाट का रूप बने बैठे हैं, जितने बाहर की अपराध विद्या के साधन है, ग्रंथों पोथों का पढ़ना, पूजा पाठ, रस्म रवाज, तीर्थ यात्रा, हवन दान, ये वो इन सब का पहले किन्हीं के घाट से है। जो आज उनके तो घाट का रूप बना बैठा है, साधन वो करता है जिनका तलक इन्हीं के घाट से है, अरे अदृश्य रघोचर को कैसे पा सकते। इट्स मैटर ऑफ सेल्फ एनालिसिस। कोई भाई अपने आप कर सकता है, मुबारक, अंधे को दो आंखें चाहिए। अगर ना कर सके तो किसी की मदद ले ले, अरे भाई दुनिया में भी तो मदद लेते, मगर किसको मदद मिलती है जिसमें कपट ना, फिर चतुराई की बातें ना करता हो, नहीं मिला तो कहते महाराज जी ने मिला तो अच्छी बात, फिर चतुराई की बातें बनाकर उसको छुपाना ना करे चाहिए। फिर आगे और क्या करे, ये दो गुण धारण करे, आगे सेवा
सेवा बंदगी अरु आधीनता, सहज मिले गुरु आई, सत्संग लागे
दो गुण और सेवा बंदगी का बढ़ावा। आपको पता है गुरु नानक साहब जब भी जहाँ जाते गुरुद्वारा धर्मशाल बनाते थे, आए गए कि भाई सेवा करो। एक चौथी चीज क्या है, निम्रता। 24 अगस्त से पूछा गया प्रभु प्राप्ति के लिए क्या गुण चाहिए, फरमाने लगे फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। पहले निम्रता हो तभी कोई किसी के पास जाए। ज्यादातर आलिम लोग, हाकिम लोग, दन्नाद लोग खाली रह जाते, वो कहते हम क्यों जाए, अगर जाते नहीं कहीं चले भी जाए वो कहो हाँ ये लिखा है फलाने ग्रंथ में, ये लिखा है फलाने में, किसान के ऊपर फैक्टर करेगा। जो अवल जाते नहीं जाएंगे, जो प्यारा सराय के नीचे रहेगा वो भर जाएगा ना, जो सराय के ऊपर रहे ये दोगुण। तीसरी न्यूनता यह है कि अगर किसी फलदार दस की साथ में फल लगे जाए वो झुक कर जमीन के साथ लग जाते, तो न्यूनता अगर चीज मिल भी गई है तो वो कहते वो कर रहा मैं नहीं कर रहा। तो सच्ची न्यूनता संतों के अंतर जो देखते हैं उसको, वो कहते मेरा किया तो क्यों हो जाए बाबे का, बाबे लोग कहते ये तो एफर्ट नहीं करता ये महात्मा का आएगा, अरे जो महात्मा अगर एफर्ट कर कैसे सकता, वो देखता तो वो कर रहा मैं नहीं कर रहा। यही है संतों में कहीं आप देखेंगे, कहीं नहीं चाहे मैं गुरु हूँ मैं ये कैसे कह मारे करने वाला, बैठो प्रभु देगा वो देने वाला। थर्ड पर्सन में हमेशा चाहिए, कहते अगर ये चीजें हो, कपट ना हो, चतुराई की बातें बनानी ना हो, सेवा बंदगी का भाव और निम्रता हो, ऐसे पुरुष को आप मिलवा जुरा गुरु अपने घर जहाँ आग जलेगी वहां ऑक्सीजन मदद की आएगी। बैठे बैठाए सदगुरु मिलिया सहज सुभाए, सहज में मिल गए जब जाते जा रहे थे गुरुदास तीर्थों पर रस्ते में सहजी में मिल गया बात समझे। ये जरूरत आगे जो थी आज भी वही क्या ढूंढते, जो सच्चे हृदय से उसको चाहता जरूर मिलेगा उसको परमात्मा, कोई सबक नहीं क्यों न मिले। गुरबानी इस बात की शायद है, सब महात्मा की बानी इस बात की शायद है, कुरान शरीफ में आता है जो बंदा मुझसे मांगेगा मैं दूंगा। गुरबानी में आता है पिता के पाल आ जाए कि बालक मुख मांगे से दिन, इससे ज्यादा और प्रार्थ चाहिए। हम क्या मांगते हैं परमात्मा से, माफ करना, जिनमें हम कुछ पूजा पाठ ये वो करते हैं ना, इसलिए करते हमारे बच्चे राजी रहे, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, हमारी रोजी खुल जाए, फलाना बीमार है राजी हो जाए, फलाना मुकदमा है जीता जाए, कैसा तो हमें वो चीज मिल जाती है। उसके दर पर किसी चीज की कमी नहीं, इसी तरह साधु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। चार पदार्थ जो कोई मांगे सात जना की सेवा लगे, मगर उसके बादशाह के पास जाकर कभी मांगने का मतलब ही क्या? जो तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। हम जिस भी हालत से दुनिया को देख रहे इसमें दुखी थे। कहते हैं एक बादशाह ने मीना बाजार लगाया, बड़े अजीब गरीब चीजें उसमें रखी। एक से एक बढ़कर अपनी रियाया को हुक्म दिया कि आज जिन आपको छुट्टी है उसमें कोई चीज जो भी तुम्हें पसंद वो ले लो, मगर तुम्हारी चाहत एक बार होगी, दोबारा नहीं। सारे आए आला से आला चीज पर बड़ी अच्छी उसको उठाई, अब दूसरी नहीं उठाती। शाम पड़ने लगी, एक लड़की बाहर से भोली भाली अंतर से बड़ी सहनी देखने लगी, ऐसा अजीब गरीब मीना बाजार जिसने लगाया है, जिसमें अजीब गरीब चीजें हैं, बड़ी कीमती चीजें हैं, ये किसने बनाया? इसी साल में तारीख भी चटती जाए और भागती भी जाए आगे। वो देखना चाहती थी कि बाजार बनाया किसने, अच्छा किसने किया। जाते जो लोग कह रहे अरे पगली वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी किसी चीज को हाथ का लगाओ ले ले। वो बीच में बड़ी शानी थी, बाल के ऊपर बाजार के ऊपर सिरे पर पहुंच गए, देखा वहां बादशाह बैठा था। चले ये कौन है बादशाह है? क्योंकि मीना बाजार लगाया। लड़की लपकी उगर, बादशाह ने कहा मेरी सारी रही है तो मुझे चाहने वाला कोई ना निकला। एक निकला है दिल से तो खुशी ऊपर जरा जबान सख्त करके कह रही, अरे नादान लड़की जाओ किसी चीज को हाथ लगा लो और ले लो। उसे ना हील की ना दलील हाथ बादशाह के सिर पर रख दिया। तो कह रहे जी बादशाह अब तुम किसके हो? कहते मैं तेरा हूँ। ये बाजार किसका है? मेरा है। अब किसका है? अब तेरा। ये है नजर महापुरुषों की। अगर हम उसके हो रहे किस बात की कमी हो जाती? दुनियावी मिसाल है, जिस लड़की की शादी हो जाए वो कभी फिक्र करते मैं रोटी कहां से खाऊं, कपड़ा कहां से पहनू, किसी की हो रही। अगर हम भी उस महापुरुष पूरी को जिसमें गौर मन फैसला हो रहे तो किस चीज की कमी रह सकती है? जब से दर्शन भेजते शादी पड़े दिन से आए जो बाली क्या है भारत तरफ से वो पावर जो है मास्टर पावर गुरु पावर जिस गॉड इन मैन कहो वो हर एक तरह की क्या करें प्रोटेक्शन और हेल्प एक्सटेंड करें। तो कहते हैं भाई हम चाहते हैं ऐसे महात्मा को मिलना, तो क्या करो? कहते कपट को छोड़ दो, नहीं मिला कहते नहीं मिला। तो प्राय महात्मा को खाए कोई मिला तो बहुत अच्छा, दो देने वाले में क्या झगड़ा है भाई? अगर 10 आदमी देने वाले उनको खुशी होनी चाहिए कि नहीं? और झगड़ा कर लेने वालों का भाई, वो कहते हैं मेरी दुकान ना बिगड़े, वो कहते हैं खाया आज झूठ बोलने पड़े। और निम्रता भाव हो, सेवा बंदगी का भाव हो, फिर उसके त्राचे वो परमात्मा आपका दूर का
ऐसी भक्ति करो घट भीतर छोड़ कपट चतुराई सेवा बंदगी और अधीनता सहज मिले गुरु आई सत्संग लाभ रहो रे भाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु बात बताई।
कहते कबीर साहब कहते हैं भाइयों सुनो मुझे सतगुरु फिर एक बात बताई है राज की, वो मैं आपको कहता हूँ। क्या?
ये दुनिया दिन चार दिहाड़े रो अलख लौला सत्संग लाग रहो रे भाई।
कहते उन्होंने क्या बात बताई है कि दुनिया चंद रोजा हमेशा रहने का मुकाम नहीं, जो आया सो गया, हम है हमने भी जाना। राणा राव न को रहे रंग न तंग फकीर बारी आपो अपनी कोई न बांध दी। देखना यह आगे क्या करना, कहाँ जाना है, किसने जाना है, हमारा हशर क्या होगा, इस बात को अगर आज हम ये जान लेंगे आसूदा दिन है हमारा इस दुनिया में तो क्या करेंगे? ये सोचना। कहते दुनिया रहने का मुकाम नहीं, मनुष्य इन भागों से मिला है, ये सुनहरी वक्त हमारे हाथ आया है, इसमें हमने प्रभु को पाना था। क्या पा लिया है? मुबारक। नहीं पाया तो सिरपट लग जा, उस होते से पहले कि ये टू लेट हो जाए। अब भी कुछ करो, पिछला बहुत सारा ऐसा जिंदगी का गुजर गया, कुछ बाकी, थोड़ा बाकी है, बहुत ही गई थोड़ी रही, अब सिरपट लगना चाहिए। मिल गया मुबारक, नहीं मिला तो कोशिश करनी चाहिए। ये कहते बात दूसरे क्या करो फिर? रहो अलख लौलाई, इंदू का घाट छोड़ना छोड़ दो। इंदू का घाट एक इनको छोड़ती है ना, मरते समय कंठ में चांद से फिर जाती है, यहाँ का जीते जी यहाँ के ऊपर चढ़ रही, आगे तुम्हें प्रभु तुम्हारा मौजूद है। किंगडम ऑफ गॉड कैन नॉट बी हैड बाई ऑब्जर्वेशन, इट इज विद इन यू। परमात्मा की बात है तो आपके अंतर है, बाहर मृत्यु रहने से नहीं मिलेगी। ये तुम्हारे अंतर है तो मिन्दु का घाट छोड़कर ऊपर आओ, उसमें दाखिल हो। ये है महापुरुषों की, कहते ये हमको सच हो सचु ने सिखलाया है कि बहुत यही थोड़ी रही ये दुनिया चंद्र ज्यादा, इसमें कोई सामान तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। अगर कोई है तो जीते जी फिर से ऊपर जाना सीख लो ताकि मौत का खौफ ना रहे, जैसे मैंने कल रात अगर अर्ज किया था। अब सवाल यह था ये परमात्मा ये होते कौन थे? कबीर साहब ने इसका जिक्र किया है, हमको किससे प्यार करना चाहिए? प्रीत उसी से कीजिए जो निभा,
प्रीत उसी से कीजिए जो निभावे।
कहते हैं कि हमको प्रीत करनी चाहिए किससे? जो ओढ़ तक हमारे साथ है, जो हमको कभी ना छोड़कर जाए, हम छोड़ जाए या वो छोड़कर न जाए। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है। प्रेमी के लिए तो प्रीतम चाहिए। कैसा प्रीतम? जो जीते जी बीमारियों में, लाचारियों में, नादारियों में हमें ना छोड़े, बल्कि जब सब दुनिया जवाब दे जाए फिर भी ना छोड़े। नानक चढ़िया संग तोड़, तुम सज्जन संत पकियां, ये जिंदे बिछड़े मोया न जा सुन छोड़, जो मरकर भी न छोड़े। दुनिया के लोग सुख में आन बहुत मिल बैठ, रात क्यों जिस घेरे विपत परी, सभी संसाधित कऊ नारक। बड़े सदाचारी भी हो हद अंत समय तक, वो घृता मरता है, कहते हैं प्रभु की जान निकाली। यही कहते हो क्या कहते? तो इसलिए कहते जीते जी अलग खेलों के घाट छोड़ना सीख जाओ, जीते जी मरना सीख जाओ, ताकि मौत का खौफ न रहे। किसी ऐसे से प्यार करो, जब दुनिया जवाब दे तुम जिस्म को छोड़ दो तब भी तुम्हारा साथ न छोड़। सच्चा सतगुरु सेव, सच संभाले, सच्चे सतगुरु के सेवने वाले बनो और सच के संभालने वाले बनो। अंत खुलवाया आए जो सतगुरु के घाया, अगर सच रूप हस्ती की चरणों में बैठकर आपने अभ्यास किया है तो अंत में जब सारी दुनिया वो तुम्हारे साथ हो। यही मुसलमान फकीरों ने कहा, दामने होगी यारे जरे को मनजा बाशद बारा हो दे, ऐ बहादुर पुरुष किसी ऐसे के दामन को पकड़ जो इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों से बात हो। तो ऐसे पुरुष वो कौन होते? कहते प्रेम किससे करना चाहिए? प्रीत उसी से कीजिए जो और निभा रहे, बिना प्रीत के मादवाद कहीं ठहर न पाओ। प्रभु के पाने का जरिया केवल प्रेम। घर में प्रेम की चुटकी डालो, घर में सुख, समाजों में डालो समाजों में सुख, मुल्कों में डालो मुल्कों में सुख। प्रेम जो पूजा पाठ ये वो प्रेम साथ करो, दो आंसू बहे ठीक खुश पूजाएं हमें कहां पहुंचाएंगे। कहते ना इस दुनिया में ढोइया ना अगली दुनिया में ढोइया बगैर प्रेम के। दसम गुरु साहब ने इसलिए कहा, साच कहूँ सुन लियो सबे दिन प्रेम पियो के नहीं कर पाया। आए भाइयों मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूँ कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। प्रेम में यक्षुई है, प्रेम में कुर्बानी है, सेवा का भाव है, लव नो सर्विस एंड सैक्रीफाइस। क्यों काम प्रेम साथ लव नो नो बर्ड, लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग। तो किसके साथ जो ओढ़ तक निभाए? पाई नंदलाल साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर दसों गुरु साहब को देखना हो तो मेरे जो आंसू बह रहे हैं ना आंखों से, इनके अंतर से दाखिल होकर देखो वो क्या। हरियो नाम पढ़े रामदास खुदा हाजर बहुत दान विभिन्न दीदार पाकिस्तान खुदा तो ये खड़ा है तो उसके पास दीदार को दे बात जंगलों में क्या था जिनको आंख देता है ना महात्मा को वही जान सकता है जिसको महात्मा आप जनाए देखने वाले तो बहुत होते हैं देखने वाले कुरैया भी कहते हैं बात समझो कैसे पुष्टि करते प्यार करो जो ओर तक निभाए कैसी प्रीति हो कहते प्रेम के बगैर न इस दुनिया में ढोई नगली दुनिया में घर में झगड़े झगड़े प्रेम की रात होने के समझते जबान प्रेम की जबान मीठी मिठतनी नाम का गुण चलिए मीठी जबान निम्रता भरी सब गुणों का था